बातों को सरल शब्दों में सुनाते हो, ज्ञान सागर के गुहे बातों को सरल शब्दों में सुनाते हो, अनुभवों के रत्नों में पिरोकर, अनुभवों के रत्नों में पिरोकर ज्ञान माला सुंदर बनाते हो, अपनी लेखनी की विशेषता से, अपनी लेखनी की विशेषता से सरस्वती को पुनः साकार कर दिखाते हो, साकार कर दिखाते हो। उर्मिला बहन जी, हम सब क्लास करेंगे कर्म और योग का बैलेंस। बाबा की इस सीजन की चली हुई अव्यक्त मुरली में हम सब ने ये सुना कि कर्म में आते हुए हम बाबा को भूल जाते हैं, कर्म और योग का बैलेंस रखकर हम कैसे चलें, उस पर हमें स्पष्टीकरण देंगी उर्मिला बहन।
ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया है, ना तो हम कर्म सन्यासी हैं और ना ही कर्म को पूजा मानते हैं। कर्म करते हुए हम इस प्रकार कर्म करते हैं कि हमारी ईश्वर से बुद्धि लगी रहे और हमारा लौकिक कार्य व्यवहार निभाया भी जाता रहे। तो जब हम सारा दिन कर्म करते हैं तो मुख्य रूप से चार बातें हैं जिनके संपर्क में हमें आना पड़ता है, या चार प्रकार के विशेष कार्य हमको करने पड़ते हैं। एक पहली बात जो बाबा ने कही कि सारा दिन मनुष्यों के संबंध में आना पड़ता है, चाहे वो देह के संबंध हो, चाहे हम जा कार्य कर रहे हो, बिजनेस या कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, वहां कुछ लोग संपर्क संबंध में आते हैं। तो बाबा ने कहा है कि पहले तो जो मनुष्यों के साथ आपका संबंध था वो वास्तव में कर्म बंधन था। हम कहते भी यही हैं कि ये व्यक्ति मेरा माता पिता भाई बहन क्यों बना, या ये मेरा साहब क्यों बना, क्योंकि इसके साथ मेरा कर्म का बंधन है। लेकिन ये भाषा ज्ञान में आने से पहले की है, ये कर्म बंधन शब्द ज्ञान में आने से पहले तक था। लेकिन जब हम ज्ञान में आ गए, मर्जीवा बन गए, पुराने जीवन को भूल गए, नए संबंध बंध गए, तो अब हमारा किसी के साथ भी कर्म बंधन नहीं है लेकिन कर्म का संबंध है। श्रीमत प्रमाण सेवा के संबंध में आते हैं। लेकिन जिन लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो सब एक प्रकार के नहीं होते हैं। सबके स्वभाव, संस्कार, सबकी आदत और सब लोगों के कार्य करने के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि जैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानना जरूरी है, ऐसे ही जो आपके साथ में रहने वाली आत्माएं हैं उनको जानना भी जरूरी है, उनका ज्ञान भी जरूरी है। उनके ज्ञान का मतलब है उनके साथ हम किस तरह से व्यवहार करें जो हमारा काम भी निकल जाए और हमारा उनसे प्रेम बना रहे। जैसे हमारे यहाँ बिजली के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन सब एक तरीके से नहीं चलते। आप कंप्यूटर चलाएंगे तो उसका तरीका अलग है, अगर आप मिक्सी चलाएंगे तो उसका तरीका अलग है, टीवी चलाएंगे तो उसका तरीका अलग है। हम सबको एक तरीके से तो नहीं चला सकते, हर एक की विधि आनी चाहिए। और एक को जिस विधि से चलाया, दूसरे को भी उसी विधि से चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग विधि और अलग अलग व्यक्ति के साथ डील करने की भी अलग अलग विधि, क्योंकि कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्य मुखी होता है, कोई व्यक्ति ज्ञान की तरफ झुकाव वाला होता है, कोई भक्ति की तरफ झुकाव वाला होता है, कोई हमारा स्नेही होता है, कोई कोई थोड़ा कम स्नेही भी होता है, कोई सहयोगी होता है, कोई विरोधी भी होगा। तो हम सबको एक जैसा तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए उस आत्मा को खुश किस तरह से रखा जाए और हमारा काम भी निकल जाए, ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम ये ना सोचें कि मैं तो जैसे चलता हूँ वैसे ही चलूंगा, ये क्यों नहीं बदलता, इसको बदलना चाहिए ना मुझे देख करके। नहीं, वो नहीं बदलेगा, लेकिन उसको देख करके हम अपने व्यवहार को अनुकूल बनाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो ऊंट के ऊपर सवारी करता था, हमेशा ऊंट पे ही बैठता था। तो एक बार उसके एक दोस्त ने साइकिल खरीदी और उसको कहा चलो तुम ऊंट पे बैठते हो, साइकिल पे बैठ के देखो। तो उसके हाथ में छड़ी थी, तो साइकिल पे बैठ के भी उसने साइकिल को छड़ी मारी और जैसे ऊंट को चलाता था ऐसे साइकिल को भी चलाने लगा। तो सब लोग देखने वाले हंस पड़े, क्योंकि ऊंट अपने ढंग से चलेगा, साइकिल अपने ढंग से चलेगी। तो ऐसे ही हर आत्मा जो हमारे संपर्क में है वो हमसे खुश रहे, भले हमें थोड़ा मुड़ना पड़े, झुकना पड़े, मोल्ड होना पड़े, वो तो बाबा ने हमको सिखा ही दिया। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जिन आत्माओं के आप संपर्क में आते हो सकता है उनमें से कोई आपकी बहुत विरोधी हो, बहुत ग्लानी करने वाली हो, आपकी बात काटती हो, हर बात में आपके पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत रोड़ा अटकाती हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब तक हम पुरुषार्थी हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो सामने आएंगी। और जैसे हम यादगार ग्रंथ महाभारत में देखते हैं, पांडवों के सामने लास्ट तक भी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पेपर आता रहा, युद्ध के आखिरी तक भी कुछ ना कुछ बात आती रही। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होगा, लेकिन बाबा ने साथ में ये भी कहा है कि अगर ऐसे होपलेस केस को आप अच्छी तरह से डील करके उसको परिवर्तन कर देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हल्की सल्की बीमारी ठीक करते हैं तो उसका इतना नाम नहीं होता, लेकिन कोई असाध्य बीमारी को ठीक करता है तो उस डॉक्टर का बड़ा नाम हो जाता है। कहते हैं जिसको कोई नहीं ठीक कर सका उसको इसने ठीक कर दिया। तो ऐसे ही बाबा कहती हैं ऐसा होपलेस केस, लोग कहते हैं इसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी शुभ भावना ने, हमारी परिवर्तन की शक्ति ने, हमारे योग बल ने और हमारे मीठे व्यवहार ने अगर उसको बदल दिया तो हम भी एक अच्छे रूहानी डॉक्टर के रूप में फेमस हो जाएंगे। जैसे एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक महात्मा जी एक गांव में गए तो कई नास्तिक लोग टोली बना करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा चलो हंसने का बड़ा अच्छा मौका है, महात्मा जी के साथ ही मजाक कर लेते हैं। तो उन्होंने जूतों की एक माला बनाई और महात्मा जी के गले में डाल दी। उन्होंने सोचा महात्मा जी चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे और हमको बहुत मजा आएगा। लेकिन महात्मा जी ने गले में जूतों की माला पहनी और वो तो वही खड़े होके नाचने लगे, बहुत खुश हो गए, पहले जितना मस्त थे उससे ज्यादा ही मस्त हो गए, और पहले जितने भगवान के गुणगान गा रहे थे उससे ज्यादा ही गुणगान गाने लगे। तो एक आदमी ने देखा ये बड़ा विचित्र आदमी है, गले में जूतों की माला फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो उसने धीरे से कान में जाके कहा महात्मा जी जूतों की माला है जो आपने पहनी हुई है, आप इसको देख देख के मुस्कुरा रहे हो। तो उसने कहा मुस्कुराऊ नहीं तो और क्या करूं, मुझे कुछ मिला ही है ना, इन्होंने मेरा कुछ लिया तो है नहीं। तो जब कोई प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले मैं एक और गांव में गया था तो वहां लोगों ने मुझे फूलों की मालाएं पहनाई थी, तो मुझे पता पड़ गया कि ये गांव मालियों का है, यहाँ माली माली रहते हैं। फिर मैं एक और गांव में गया तो वहां लोगों ने मुझे मोतियों की माला पहनाई, तो मैं समझ गया कि यहाँ मोतियों का काम करने वाले, सोने चांदी का काम करने वाले सुनार लोग, ये सब लोग रहते हैं। और जब इस गांव में आया तो लोगों ने मुझे जूतों की माला पहनाई, तो मैं समझ गया कि इस गांव में सारे वही लोग रहते हैं जो जूते बनाते हैं। तो इसलिए अब इन बेचारों के पास जूतों के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे क्या देंगे। जिनके पास फूल थे उन्होंने फूल दिए, जिनके पास मोती थे उन्होंने मोती दिए, और जिनके पास जूते थे उन्होंने जूते दे दिए। तो मुझे सबने कुछ ना कुछ दिया ही है ना, तो मैं तो खुश हूँ लेकर के, अपनी सौगात देख करके, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी बात सामने आती है ना उससे फायदा उठाओ, बातें कह के तो नहीं आती ना कि भाई सावधान हो जाओ, कुछ सोच लो, मैं आ रही हूँ। लेकिन जिसके सामने आती है अगर वो पहले से ही ज्ञान स्वरूप अवस्था में है, स्वरूपस्थ है, तो वो हर बात से फायदा उठाएगा। लेकिन बाबा ने एक बात और भी कही है कि जब आप मनुष्यों के संबंध में आते हो तो कई ग्लानि करने वाले मिलेंगे लेकिन कई महिमा करने वाले भी मिलेंगे। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि अटैचमेंट में भी नहीं फंसना है। कई लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप जैसा पहुंचा हुआ ज्ञानी नहीं देखा, योगी नहीं देखा, आप जैसा अच्छे व्यवहार करने वाला नहीं देखा, आपको देख करके तो ऐसे ही लगता है कि आप संपूर्ण हो गए हैं, ऐसी ऐसी महिमा करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो बाबा ने उसके लिए भी सावधानी दी है क्योंकि जो महिमा होती है ना वो भी कम बुद्धि को भटकाने वाली नहीं होती है। महिमा में भी व्यक्ति फंसता है, व्यक्ति के लगाव में भी व्यक्ति फंसता है। तो कैसे पता पड़े कि ये हमारा लगाव है या हम सेवा के संबंध में हैं? अगर लगाव होगा तो सेवा बंधन बन जाएगी और अगर लगाव नहीं होगा तो सेवा का संबंध बड़ा मीठा होगा। अब जैसे ही व्यक्ति का लगाव आएगा तो क्या होगा, बुद्धि भटकेगी, योग नहीं लगेगा, बार बार उसी की याद आएगी और जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसके आगे हम उसकी महिमा जरूर करेंगे। आपको पता है उसमें कितने गुण है, आपको पता है उसमें कितनी क्वालिटीज है, आपको पता है वो कितना पहुंचा हुआ है। तो अगर बाकी लोगों की उपेक्षा करके हम केवल एक ही महिमा किए जा रहे हैं, एक ही गुण देखे जा रहे हैं, एक का ही वर्णन किए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसके साथ हमारी अटैचमेंट है क्योंकि एक के अलावा हमें बाकी किसी के गुण दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात, जब हम अटैचमेंट में आते हैं तो हमारा अपना पुरुषार्थ भी कम हो जाता है अगर लगाव होगा तो। जैसे आपने देखा होगा भाई एक बूंद शहद की गिरी और मक्खी को शहद से बहुत प्रेम होता है। अब मक्खी भले आए और जितना उसको खाना है उतना शहद खा के उड़ जाए लेकिन मक्खी क्या करती है, शहद खा करके न्यारी नहीं होती, उड़ती नहीं है, वो खाना तो भूल जाती है लेकिन अपने पंख, अपने हाथ, अपने पांव सबके सब उस शहद में लिपायमान कर लेती है। अब उसने खाया तो कुछ है नहीं लेकिन फंस गई बेचारी, और ऐसी फंसी है कि ना शहद का आनंद ले सकती ना जीवन का आनंद ले सकती है। तो शहद है तो अच्छी चीज, मक्खी के काम की है, लेकिन काम के होते भी उसके लिए वो दुखदाई बन गई। क्यों? क्योंकि केवल मुंह लगाना था लेकिन उसने तो हाथ पांव सब कुछ उसमें चपेट लिया। इसलिए किस व्यक्ति के साथ हमको कितना व्यवहार करना है, कितना संपर्क में आना है, उससे कहां तक डील करना है, उसकी भी मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा रेखा है। हमारा केवल ज्ञान का ही कनेक्शन है या हमारा कारोबारी कनेक्शन है, किस प्रकार का कनेक्शन है, कितना हमको उसके संपर्क में आना है। अगर हम बहुत उसके अंदर घुस गए, बहुत अनचाही बातों में उसके साथ उलझ गए तो वो मक्खी वाला हाल होगा, फंस जाएंगे लेकिन निकलना मुश्किल हो जाएगा, ना उसके साथ रहते बनेगा ना उसको छोड़ते बनेगा, और छूटेगा संबंध तो वो एक क्या कहते हैं कुछ ऐसा दाग लग कर के छूटेगा कि दोबारा फिर प्रेम नहीं बन सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा दोनों बातों का ध्यान रखना है। जब हम कर्म योग में आते हैं तो और क्या है, एक तो मनुष्यों के संबंध में आते हैं और दूसरा बाबा कहता है शरीर निर्वाह करना होता है। वास्तव में हमारा जो योग है वो कर्म पर आधारित है, तो कर्म की क्वालिटी कैसी है उसके आधार पर हमारा योग लगता है। अगर हमारे कर्म की क्वालिटी लो है तो योग भी लो क्वालिटी का हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा कर्म बहुत हाई क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का माना कर्म करते हुए चिंतन हाई क्वालिटी का है, तो हमारा योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए योग से पहले कर्म है। तो एक तो जब हम कर्म करते हैं तो मनुष्यों के संबंध में आते हैं और दूसरा हमको शरीर निर्वाह करना होता है। अब बाबा ने कहा शरीर निर्वाह तो जो उसके पास शरीर है उन सबको करना ही पड़ेगा, इसलिए हम शरीर निर्वाह को छोड़ नहीं सकते। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि शरीर निर्वाह करते आत्म निर्वाह को भूलना नहीं। शरीर और आत्मा दोनों का आपस में गहरा संबंध है, तो शरीर की पालना करनी तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम शरीर की पालना में इतने खो जाएं कि आत्मा के ऊपर भले बोझ है, भले दबाव है, भले उसको चिंता हो रही है, भले उसको ठीक से नींद नहीं आ रही है, क्या उन सब बातों की तरफ भी ध्यान ना दे? भाई मेरे शरीर निर्वाह के लिए एक मुझे इम्पोर्टेंट काम मिला है, वो मुझे करना है, लेकिन शरीर का मालिक आत्मा उस काम को करते करते दबाव महसूस कर रहा है, तो क्या करना है? क्या शरीर निर्वाह इतना इम्पोर्टेंट है कि हम मालिक की बात ही ना सुने? इसलिए बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस चाहिए। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि को भूलना नहीं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं भाई एक घंटे में एक गिलास पानी पियो तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कर्म करते करते बीच बीच में अगर बाबा की याद में कर्म करो तो कर्म आपको बोझिल नहीं करेगा, भारी नहीं करेगा, और कर्म करते करते जो आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है वो भी नहीं होगी। कई बार जब हम काम करते हैं तो कहते हैं भाई हम तो बहुत थक गए, माथा बहुत थक गया, बहुत सोचना पड़ा, बहुत बोलना पड़ा, बहुत थक गए। आप बहुत थक गए तो थकान को दूर करने के लिए क्या करते हैं? कहेंगे भाई कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट हो जाए, कुछ अच्छा खाएं, चाय पिए, कोई जूस पिए, कोई फल खाएं, कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट हो। अब हमने जो रिफ्रेशमेंट ली उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा तो शरीर को मिला। आपने जूस पिया, चाय पी, फल खाया, कुछ भी खाया, वो तो शरीर को मिला, पर थका कौन था? आपने बहुत सोचा, बहुत बोला या और भी कुछ किया, थका कौन था? शरीर थका था या मन थका था? शरीर थका था या आत्मा थकी थी? थकी तो आत्मा थी। तो आपने आत्मा के लिए क्या किया? शरीर को तो खिला दिया, पिला दिया। कई लोग रेस्ट करेंगे, लेट जाएंगे, भी शरीर बहुत थक गया, तो वो भी रेस्ट शरीर को ही मिला। मन तो अभी भी चल रहा है, अभी भी व्यर्थ सोच रहा है, उसको तो अभी भी रेस्ट नहीं मिला। तो मन को कैसे रेस्ट दिया जाए? बाबा ने उसकी विधि बहुत सुंदर बताई है। तन की रिफ्रेशमेंट के साथ साथ मन की रिफ्रेशमेंट भी करो। तो मन तक कौन सी चीज पहुंचती है? जैसे हम भक्तों को कहते हैं भाई आप गंगा जल से स्नान करते हो तो ये जल आत्मा को पावन नहीं बनाता, क्योंकि जल तो आत्मा को छूता ही नहीं है, शरीर को छू के लौट जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को छूने वाली कौन सी चीज है जो उसको सोलेस दे सके, उसे रिलैक्स कर सके? तो वो या तो ज्ञान है, कोई ना कोई हाई थॉट पढ़िए, ज्ञान की बात पढ़िए। अगर जेब में मुरली है तो मुरली की बात निकाल के पढ़िए। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे ये पुरानी दुनिया मरी हुई है इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, और अगर याद की तार टूटी तो आपको सजा खानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने पॉकेट से ये बात निकाल करके पढ़ी है, दो लाइनें निकाल करके पढ़ी, और आप क्यों भारी हो गए थे? इसलिए भारी हो गए थे कि आपको किसी ना किसी चीज को देख करके, व्यक्ति को देख करके संकल्प विकल्प चल रहे थे, कर्म करते करते उस कर्म के हानि लाभ के बारे में संकल्प चल रहे थे, आपके ऊपर बोझ था। लेकिन जैसे ही आपने ये दो लाइनें पढ़ी कि ये दुनिया तो जाने वाली है इससे दिल नहीं लगाना, तो आपको क्या होगा? एकदम आप रिलैक्स हो जाएंगे। अरे मैं क्या चिंता कर रहा हूँ, थोड़ा सा नुकसान हो गया, सारी दुनिया ही जाने वाली है। बाबा ने कहा याद की तार टूटी तो बहुत घाटा हो जाएगा, मैं 2-4 रुपए 10 रुपए के घाटे की बात सोच रहा हूँ, और अगर मेरी याद की तार टूट गई तो मुझे कितना बड़ा घाटा हो रहा है, मैं बाबा को भूल रहा हूँ तो कितना बड़ा घाटा हो रहा है। तो एकदम क्या होगा, मन बदल जाएगा, रिफ्रेशमेंट आ जाएगी। मन की जो क्या कहते हैं, मन का जो मार्ग, मन जो मार्ग को भटक रहा था तो वापस अपने सीधे मार्ग पर आ जाएगा। जो हुआ उसको बिंदु लगाओ और बाबा को याद करो। तो हमको ये देखना है कि कर्म करते हुए आत्मा के ऊपर भार तो नहीं पड़ रहा, बोझिल तो नहीं हो रही, तनावग्रस्त तो नहीं हो रही, एक बात को कई बार चिंतन तो नहीं कर रही है। अगर एक बात का मन में कई बार चिंतन आता है तो एक बार बैठ जाओ और अपने से सवाल पूछो कि मैं इस एक बात को 10 बार क्यों सोच रहा हूँ। अगर आपसे कोई एक काम दोबारा भी करवा ले तो आप इरिटेट हो जाते हैं, आप कहते हैं मैंने अभी अभी तो किया था, अभी फिर दोबारा क्यों करवा रही हो। मान लो आप घर में कोई चीज खरीद के लाते हैं और घर वाले कहते हैं आज फिर ला दो, तो आप क्या कहते हैं, कल तो मैं लेके आया था, आज फिर मंगवा रहे हो, कहाँ गई। कोई दूसरा आदमी बार बार काम करवाता है तो इरिटेशन आता है, लेकिन हम अपने आप से ही क्यों बार बार काम करवा रहे हैं, एक ही संकल्प को क्यों बार बार अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना श्रम क्यों दे रहे हैं। एक बात को एक बार सोचने से काम पूरा हो रहा है ना, फिर उसको 10 बार क्यों सोचा, कितनी एनर्जी गई, कितना टाइम गया, कितनी अंदर का जो संकल्प शक्ति थी वो गई। उसके बजाय हम कुछ और सार्थक बात पे चिंतन करते, किसी समस्या का समाधान सोचते, कोई ज्ञान का मनन करते तो कितना फायदा होता। तो कर्म करते आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि रहे। बाबा कहते हैं दो बातें हैं, एक है व्यवहार और एक है परमार्थ। तो व्यवहार माना जगत का व्यवहार और परमार्थ माना जो परम है, सुप्रीम है, उसके प्रति हम जो भी कुछ करते हैं वो परमार्थ है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि केवल व्यवहारी बन जाओ, नहीं, और ये भी नहीं कहा कि केवल परमार्थी बन जाओ। बाबा ने कहा दोनों को कंबाइंड करो, व्यवहार करते हुए भी परमार्थी बन के रहो और परमार्थी बनते हुए भी व्यवहारी बन करके रहो। इतने परमार्थी भी ना बन जाओ कि व्यवहार को ही भूल जाओ, नहीं तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे इनका क्या ज्ञान है, ये तो इतने खोए रहते हैं कि काम की बातों को ही भूल जाते। और अगर काम की बातों में इतने मशगूल हो गए तो बाबा कहेगा कि ये बच्चा क्या है, तो मेरे को ही भूल गया, कर्म के आगे से योग हटा दिया, ये तो केवल कर्म कॉन्शियस रह गया। तो हमको दुनिया को भी खुश रखना है और बाबा को भी खुश रखना है, तो दोनों का बैलेंस रखना। अब इसके लिए जैसे बाबा कहते हैं, युक्ति बहुत बताते हैं बाबा। जैसे बाबा कहते हैं मान लो आप बिजनेसमैन हैं, तो आप बाबा को अपना हाफ पार्टनर बना लो, तो क्या होगा, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा और जो भी बिजनेसमैन होता है उसको अपना पार्टनर कभी भूलता है क्या, कभी नहीं भूल सकता। वो एक पैसा भी कमाएगा तो उसको याद रहेगा कि मेरे पार्टनर का भी इतना ही है, कभी नहीं भूल सकता। अगर आप परिवार में रहने वाली हैं, माता हैं, तो आप उसको अपना बच्चा बना लो। कोई भी माता खाना बनाएगी तो सबसे पहले कौन याद आएगा, मेरे बच्चे को ये वाला खाना पसंद है। तो क्या हो गया, आपका खाना भी बन गया और आपका परमार्थ भी सिद्ध हो गया, आपको परमात्मा भी याद आ गया। कोई आप चीज खरीदते हो तो भी याद करो कि ये चीज मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, तो मैंने बाबा के लिए क्या किया, बाबा के लिए क्या खरीदा। अगर आप मकान बनाते हो तो याद करो मैं इस कमरे में रहूंगी तो बाबा को भी तो एक कमरा चाहिए, तो बाबा के लिए भी तो बनाऊं कोई जगह, बाबा को भी तो अपने घर में रखूं। तो जब भी आप कोई भी लौकिक काम करने लगे तो उसमें आप बाबा का हिस्सा जरूर निकालें, तो क्या हो जाएगा, आपका व्यवहार भी सिद्ध होता रहेगा और आपका परमार्थ भी हो जाएगा। बाबा कहती हैं तन भी खुश रहेगा, मन भी खुश हो जाएगा, लोक भी सुहेला होगा, परलोक भी सुहेला होगा, इस लोक की भी कमाई जमा होगी, परलोक की भी कमाई जमा होती रहेगी। और फिर तीसरी बात क्या आती है, जब हम सारा दिन कर्म योग करते हैं तो तीसरी चीज आती है, कुछ ऐसे अनजान लोग भी हमारे कनेक्शन में आते हैं और कुछ वैभव की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया में वैभव तो बहुत है ना, ये दुनिया तो बाबा कहती है माया का पॉम्प एंड शो है। इसमें हर रोज आपको ऐसे ऐसे मकान, दुकान, चीजें, पदार्थ दिखाई देंगी, आप कहेंगे ये तो कभी देखा ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो आकर्षण करने वाले वैभव भी बहुत होंगे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो कभी कभार मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, रास्ते चलते मिलते हैं, अब बाबा ने कहा है अगर कर्मयोगी बनना है तो ऐसे व्यक्तियों और ऐसे वैभवों के प्रति कौन सी दृष्टि रखनी है? अनासक्त दृष्टि। जो रोज रोज चीज दिखती है वो आसक्त नहीं करती, लेकिन जो कभी कभी अचानक एकदम नई चीज दिखती है उसमें एकदम आसक्ति जाती है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखी नहीं, ये तो नई निकली लगती है, इसको तो ले ही लेना चाहिए, भरत के तो देखना चाहिए कैसी है, या कोई नया व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके रूप पर या उसके पहनावे पर या उसके चाल ढाल पे आत्मा का ध्यान जाता है, बार बार ध्यान जाता है, जिनसे हम रोज मिलते हैं उनमें तो नहीं जाता। तो बाबा ने कहा है अगर ऐसे व्यक्ति और ऐसे वैभव पर अगर आसक्ति आ गई तो ये आसक्ति चुंबक की तरह से आपको खींचेगी और आपको अपने जाल में फंसा लेगी। आप कहेंगे मुझे क्या पता, मैं तो अनुभवी नहीं था, मुझे तो नया नया लगा इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, फिर अपने आप को छुड़ाने के लिए हम इस तरह के बहाने देंगे। और बाबा ने कहा अगर आप अनासक्त हो गए तो वो व्यक्ति और वो वैभव आपके चरणों में आ जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, अपनी अनासक्ति को इतना मजबूत बनाओ, अपने अनासक्त भाव को इतना दृढ़ करो कि कोई भी अचानक आने वाली माया, माया का रूप धारण करके मोहिनी रूप धारण करके आने वाली कोई भी चीज आपकी बुद्धि को फिराए नहीं। इसके लिए पहले से अपनी वैराग्य वृत्ति को दृढ़ बना करके रखो। या फिर हमको बाबा की मुरली मदद करती है, जैसे आज बाबा की मुरली की पॉइंट थी, बाबा ने कहा ये दुनिया जाने वाली है, तो इस एक लाइन में सारा सार आ गया, चाहे नई चीज हो चाहे पुरानी चीज हो, चाहे सोने की लंका की तरह से चमचमाती चीज हो चाहे सोने का हिरण हो, कुछ भी हो है तो सब कुछ पुरानी दुनिया का ही ना, और पुरानी दुनिया का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, बाबा ने कहा ये जाने वाली है, तो जाने वाली है तो मुझे उसकी तरफ देखना नहीं है, मेरी नजरें बाबा की तरफ, तो जब हम उसकी तरफ से पीठ मोड़ेंगे तो वो हमारे चरणों में आएगी, और जब उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो हमें अपने जाल में फंसा करके इतना भटकाएगी कि लास्ट में हम अपनी सारी शक्ति गंवा देंगे। बाबा कहते हैं आसक्ति होती है तो शक्ति चली जाती है। तो अगर हमको कर्म योगी बनना है तो व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव, कोई भी व्यक्ति हो, जाना अनजाना, कहीं भी मिलने वाला श्रेष्ठ आत्मा है, मस्तक में चमकती हुई मणि है। बाबा कहते हैं बच्चे आप हंस हो, हंस में और कव्य में क्या अंतर है, कहते हैं कव्य की जो चांच होती है ना वो गंदगी में होती है, मांस में होती है, और हंस की जो नजर होती है वो मोती पर होती है। तो इस शरीर में मोती कहाँ है, मोती की जगह तो एक ही है, मस्तक में ही है मोती, बाकी तो कोई मोती है ही नहीं, और बाकी सब क्या है, बाकी तो सब गंदी ही है, जो भी कुछ है इसमें जो भी कुछ भरा हुआ है। तो अगर हमारी दृष्टि कव्य जैसी होगी तो कहाँ जाएगी, नाक कैसी है, आँख कैसी है, कान कैसा है, लंबा है छोटा है, चौड़ा है मोटा है, गोरा है काला है, क्या क्या पता नहीं कितनी तरह का चिंतन चलेगा। और अगर हंस जैसी दृष्टि होगी तो सीधी नजर कहाँ जाएगी, मोती में जाएगी, हीरे में जाएगी, माणिक में जाएगी, श्रेष्ठ आत्मा पवित्र आत्मा। तो जैसे ही मोती में माणिक में नजर जाएगी, हीरे में नजर जाएगी, तो हम अनासक्त हो गए, न्यारे हो गए, डिटैच हो गए, और डिटैच होकर के जब व्यवहार में आएंगे तो उसका भी पुण्य बनेगा, हमारा भी भाग्य बनेगा। फिर बाबा कहती हैं एक चौथी चीज है, जब हम कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं और उसके बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता, वो है साधन। वैभव में और साधन में अंतर है, वैभवों के बिना हमारा काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे साधन है जिनका हमें उपयोग करना ही पड़ता है। जैसे बाबा कहते हैं शरीर भी कर्म के लिए साधन, तो इस साधन से हम छूट तो नहीं सकते, इसके बिना तो हमारा कर्म योग पूरा ही नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा वैभवों के प्रति तो अनासक्त रहना है, लेकिन साधनों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो। और जैसे जैसे विज्ञान के चमत्कार बढ़ रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति आ रही है, साधन बढ़ते ही जा रही है, इतनी चीजें हो गई हैं कि आदमी को खाना भी ना पड़े, चबाना भी ना पड़े, सीधा ही पेट में चला जाए, हाथ से कुछ करना भी ना पड़े, सब कुछ तैयार मिले, चलना भी ना पड़े, अपने आप ही पहुंच जाए। कितने प्रकार के साधन, हर रोज नई नई एडवर्टाइजमेंट आती है, ये वाला ऐसा साधन है इसे ये सुख मिलेगा, ये वाला ऐसा साधन है इसे ये सुख मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे साधनों का प्रयोग बेशक करो, क्योंकि कई साधन ऐसे होते हैं जो हमारे समय की बचत करते हैं, हमारी एनर्जी की बचत करते हैं, और कई साधन ऐसे होते हैं जो हमारी शक्ति को कई गुना लोगों तक पहुंचा देते हैं। उन साधनों का प्रयोग तो करना है, लेकिन बाबा कहते हैं उन साधनों का प्रयोग करते हुए भी साधना को नहीं भूलना है। साधना ऊपर है, साधना आगे है, और साधन पीछे। पहले साधना को पकड़ो, फिर साधन को पकड़ लो, तो वो साधन नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर साधना का कवच है, तो वो साधन आपका नुकसान नहीं करेगा। साधना का कवच पहन करके साधन को यूज करेंगे तो वो आपका सेवक बन के रहेगा, आपको सुख देगा, आपकी उन्नति में सहायक बनेगा। लेकिन आपने साधना का कवच नहीं पहना और डायरेक्ट साधन को यूज कर लिया, तो वो साधन आपकी वृत्ति को हलचल में ले आएगा, आपका मालिक बन जाएगा, राजा बन करके आपको चलाएगा। जैसे बाबा कहते हैं धन एक साधन है, धन रूपी साधन से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन साधना का कवच अगर ना हो और हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें तो क्या होगा। जैसे चौकीदार मालिक की चाकरी करता है ना, मालिक की रखवाली करता है ना, तो ऐसे ही फिर हम भी क्या बन जाएंगे, अपने धन के चौकीदार बन जाएंगे और हमारा धन हमारा मालिक बन जाएगा। तो चौकीदार को क्या करना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है मालिक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, दिन में भी जागना पड़ता है मालिक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वो बंदूक लेकर के खड़ा रहता है, मेरा मालिक अंदर है, मैं दरवाजे पे हूँ, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो ऐसे ही फिर हालत हो जाती है, धन अंदर पड़ा है और मैं चौकीदार उसकी चौकीदारी कर रहा हूँ, उसको कोई उठाना ले जाए, कोई उसको हाथ ना लगा दे, कोई उसकी तरफ नजर ना डाल दे, तो धन क्या हो गया, हमारा मालिक हो गया और हम कौन हो गए, चौकीदार हो गए। अब चौकीदार को थोड़ी बहुत तनख्वाह तो मिलती होगी ना, मालिक की अगर वो चाकरी करता है तो, लेकिन ये बेचारा चौकीदार ऐसा है इसको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, और उस चौकीदार को थोड़ी बहुत छुट्टी तो मिलती है ना, भाई संडे छुट्टी चला जा या दो चार महीने की, लेकिन ये बेचारा ऐसा चौकीदार है इसको कभी छुट्टी भी नहीं मिलती, 365 दिन की चौकीदारी। और अगर शरीर छूट जाए तो पीछे वालों को कुछ मिल तो जाता है, ये चौकीदार का अगर शरीर छूटे, लेकिन ये चौकीदार ऐसा है बेचारे का शरीर छूटेगा तो सब कुछ अंदर का अंदर ही रह गया और ये तो खाली हाथ चला गया। तो हम अपने धन के चौकीदार बन गए, मालिक बने नहीं, उसका सदुपयोग किया नहीं, जहाँ लगाना था वहां लगाया नहीं, तो उसने हमको नौकर बना लिया, जिंदगी भर नौकर बनाए रखा। तो बाबा कहती है कोई भी साधन अगर आपका मालिक बन जाएगा ना, तो आपका सुख चैन सब चला जाएगा। दूसरी बात, जब साधन हमारे मालिक बन जाते हैं तो हमें कोई सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धि तो तब मिले जब हम साधना करें। अब हम साधना करते नहीं है, साधनों के पीछे लगे हुए, ना तो हमारे वचन में सिद्धि आएगी, ना दृष्टि में सिद्धि आएगी, ना कर्म में सिद्धि आएगी, जीवन भर करते रहेंगे लेकिन सिद्ध नहीं बनेंगे। अगर साधना को साथ में रखा तो सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि का मतलब क्या है? फिर वो काम बिना मेहनत के ऑटोमेटिक होने लगेगा। दृष्टि में ऐसी सिद्धि आ जाएगी कि बिना मेहनत के लोगों को दृष्टि से अनुभूति होने लगेगी। वाणी में सिद्धि आ जाएगी, करते करते शुभ, बोलते बोलते वचन भी सिद्ध होने लगेंगे। बाबा का वरदान है, बाबा ने कुछ दिन पहले वरदान में कहा था ऐसा भी होगा। कर्मों में सिद्धि आ जाएगी। तो अगर हम कर्म करते इन चारों पहलुओं के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे तो कर्म योगी बन जाएंगे। बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को काम दिया कि हर घंटे निराकारी और अव्यक्त फरिश्ता स्थिति दोनों का अभ्यास करना है। अगर हमारा कर्म ठीक है तो बिना मेहनत के हम अव्यक्त स्थिति में और निराकारी स्थिति में टिक जाते हैं। लेकिन हमने कर्म करते हुए अपनी मनोवृत्ति को ठीक नहीं रखा और बाद में हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं निराकारी बन जाऊं, मैं अव्यक्त बन जाऊं, मैं निराकारी बन जाऊं, अव्यक्त बन जाऊं, बना ही नहीं जाता। और बना नहीं जाता है तो थकान होती है और फिर छोड़ देते हैं। बनते बुनते तो है नहीं, इसलिए अच्छा है काम ही कर ले, फिर दोबारा काम में लग जाते। लेकिन कर्म की विधि ठीक चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि मिलती है। आप अपने कर्म की विधि को ठीक करो, कर्म को श्रीमत प्रमाण मिलो तो योग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, योग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहती हैं योग है क्या? एक बाबा को याद करना और एक अपने घर को याद करना। अब घर को याद करना, हम रोज देखते हैं जो पालतू जानवर होता है या कोई भी हो उसको भी अपना घर कितना याद रहता है और उसको वो टाइम का भी पाबंद रहता है। आप घोड़े को देखिए, घोड़े को अपना घर, अपना अस्तबल और टाइम पक्का याद रहता है। घोड़े के बारे में ये प्रसिद्ध है कि अगर प्रतिदिन वो 5 बजे अपने अस्तबल में जाता है, मान लीजिए उसको टाइम का अपने आप पता रहता है, और कोई सवार उसको 5 बजे के बाद भी उसकी राइडिंग कर रहा है तो घोड़ा क्या करेगा? अपने आप अपना रास्ता मोड़ लेगा और सीधा उसको अस्तबल में ले जाएगा। 5 बजे के बाद वो कहीं और नहीं जाएगा, उसको इतना पक्का समय का रहता है, मेरा घर जाने का टाइम आ गया। तो कोई जैसे होते हैं ना किराए पे लोग घोड़े लेकर के और ऐसे राइडिंग के लिए जाते हैं, तो कई बार घोड़ा उसको फिर अस्तबल में ले जाता है, ऐसा भी होता है। और कई बार गाय कई लोग खरीदते हैं लेकिन वो क्या करती है, अपने पुराने मालिक के पास लौट आती है। 5-6 साल जिस घर में रही होती है वो घर उसको पक्का हो जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं देखो जानवरों को भी अपना घर कितना पक्का याद रहता है। तो हम सबका घर कौन सा है? परम धाम। और ये कौन सा समय है? घर वापस जाने का समय है। हमारा भी घर वापस जाने का समय आ गया ना, 5,000 साल हमने यहाँ बहुत पार्ट बजा लिया, अब हमको क्या करना है? वापस लौटना है। बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी है, घर जाना है, घर को नहीं भूलो। अभी तो लेटेस्ट मुरलियों में बाबा बार बार कहता है बच्चे घर जाना है, घर जाना है, इस मंत्र को पक्का करो। तो हमको भी क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए घर, मस्त हो जाना चाहिए इस दुनिया में। चलो अभी थोड़े दिन तो और, थोड़े दिन तो और। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ा 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 करते करते क्या पता कब धोखा हो जाए। इसलिए बुद्धि को अपने घर में रखो, शिक्षा लो कि जैसे एक चिड़िया को भी सांझ होते ही अपना घोंसला याद आ जाता है। बाबा कहते हैं लौकिक बातों से भी शिक्षा ग्रहण करो, लौकिक बातों को भी अलौकिक बातों में परिवर्तन कर लो, लौकिक को देखते हुए भी ज्ञान युक्त बातों को याद करो। भले बात लौकिक है लेकिन लौकिक बात में भी आप ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं और वो लौकिक बात भी आपके उद्धार के निमित्त बन सकती है। और सारा दिन हम इस लौकिक दुनिया में तो लौकिक बातें ही देखते हैं, लेकिन उनको लौकिक दृष्टि से ही देखेंगे तो सारा दिन हमारा लौकिकता में चला जाएगा। लेकिन अगर लौकिक बातें देखते भी हमें अलौकिक बातें देखने का अभ्यास हो जाएगा तो सारा दिन हमारा अलौकिकता में जाएगा। अब जैसे कहते हैं कि एक बार एक भगत व्यक्ति था, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, तो एक दिन एक रात उसको वहाँ रहना था। तो उसके घर में जब सोया, दोनों एक ही कमरे में थे, तो जो उसका मेजबान था वो रात को उठा, अपने नशे में ही उठा, उठा क्या, जैसे बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, चारपाई से उठा नहीं, लेकिन आंखें खुली, जागते हुए जैसा लगा, जागा तो नहीं था, और चारपाई के ऊपर ही उसने जोर जोर से हाथ मारा और हाथ मार के कहा, साढ़े पांच सौ रुपए। तो ये आदमी को बड़ा विचित्र लगा, कई देर तक ऐसे ऐसे बोलता रहा। तो सुबह जब उठे, आपस में बातचीत की, मिले, तो उसने कहा, भाई तुम तो रात को भी साढ़े पांच सौ कर रहे थे। तो उसके बच्चे पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, आपने तो एक ही दिन इनके साथ रह करके देखा और एक ही दिन आपकी नींद खराब हुई, हमारी तो रोज ही नींद खराब होती रहती है। तो उस आदमी ने सोचा, देखो ये तो बड़ा अच्छा है, दिन में भी धन की भक्ति करता है और रात को सोया हुआ भी धन की भक्ति करता है, और मैं ऐसा भक्त हूँ जो केवल दिन में भक्ति करता हूँ, रात को तो भक्ति नहीं करता हूँ, तो ये तो मेरे से भी आगे है, तो मुझे इससे सीखना चाहिए। जैसे ये रात को भक्ति करता है ना, किसकी भक्ति करता है, धन की भक्ति करता है, तो मेरी भक्ति अभी अधूरी है, मुझे भी रात को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरी भक्ति पूर्ण तब होगी जब मैं भी रात को इसी की तरह से उठ जाग करके मना भगवान का नाम मेरे मुख से निकले। तो उसने क्या किया, एक लौकिक बात को देखा तो उससे एक शिक्षा ग्रहण की, उससे एक पाठ पढ़ा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे लौकिक बातों को देखते हुए भी उनसे पाठ सीखो, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, उनसे प्रेरणा लो और उनसे अपने ज्ञान योग को परिपक्व बनाओ। बाबा की याद के लिए एक छोटी सी युक्ति हम अपनाएंगे, अपनाते भी होंगे। जैसे कहते हैं, मनुष्य की जो बुद्धि होती है ना, या जो स्मृति होती है, वो बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत विशाल नहीं है। ऐसे तो हमारे अंदर जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन वो सारे स्टोर में, जैसे मान लो कोई दुकान है और उसके स्टोर में तो बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन ग्राहकों को बेचने के लिए वो जो सामने चीजें रखता है वो तो गिनती की रखता है, और उसको ये भी पता रहता है कि भाई रोज कौन सी चीज बिकेगी, और 3 महीने में कौन सी बिकेगी, 6 महीने में कौन सी बिकेगी, साल में कौन सी बिकेगी, तो साल वाली को, 6 महीने वाली को तो स्टोर में रखेगा, और जो दिन में कई बार बिकती हैं उस चीज को सामने रखेगा। तो वो चीजें तो थोड़ी सी होती हैं और स्टोर में तो बहुत सारी होती हैं, सामने का इतना प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है कि उसमें वो बहुत सारी चीजें रख सके। तो मनुष्य की स्मृति भी ऐसी है, संस्कार तो उसमें जन्म जन्म के भरे पड़े हैं, लेकिन जो रोज काम में आने वाली बातें हैं, जिनसे हमारा रोज का व्यवहार चले, वो बातें तो बहुत थोड़ी सी हमें स्मृति में रहती, तो वो बातें हमें कौन सी स्मृति में रखनी है, वो वाली बातें हमारी स्मृति में रहनी चाहिए जिनसे हमारा कर्म योगी जीवन सफल हो सके। मान लो हम स्टोर की उन अनचाही चीजों को निकाल करके बाहर काउंटर पे रख लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा काउंटर तो उन अनचाही चीजों से भर गया, और ग्राहक जब चीज मांगने आया तो उसके काम की एक भी चीज नहीं मिली, तो ग्राहक क्या कहेगा, ये तो वहां से जाएगा, फिर निकाल के लाएगा, उसके बाद मुझे देगा, मैं इतना टाइम नहीं खड़ा रह सकता, मैं तो कहीं दूसरी जगह से ले लूंगा। तो जो होशियार दुकानदार होता है वो ग्राहक का टाइम खराब नहीं करवाता। तो बाबा कहते हैं, अगर आप पुरानी स्मृतियों में अपनी इस जागृत अवस्था को, माना अपनी जो रोज की कार्य व्यवहार वाली स्मृति को पुरानी स्मृतियों से भर के रखेंगे तो क्या होगा, आपकी पुरानी स्मृतियां ही आपको घेर के रहेंगी, आपको समय पे बाबा भी याद नहीं आएगा, समय पे आत्मा के गुण भी याद नहीं आएंगे, समय पर मुरली की बात भी याद नहीं आएगी, समय पर आपको जो शक्ति या गुण यूज करना है वो भी याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका काउंटर तो पुरानी बातों से भरा हुआ है, बीती हुई बातों से भरा हुआ है, या जो बातें आपको नहीं चाहिए, जो आपके काम की नहीं है, जो इस कर्मयोगी जीवन में आपको कहीं भी फायदा नहीं देती हैं, उन बातों से भर गया आपका मेमोरी का काउंटर, तो अब आप क्या करेंगे? याद करना चाहते हैं, याद करने लगते हैं, लेकिन फिर वो पुरानी बात आ जाती है। तो जैसे एक दुकानदार, होशियार दुकानदार अपनी चीजों की ठीक सेटिंग करता है, ऐसे हमें अपनी मेमोरी की ठीक सेटिंग करनी है। ठीक टाइम पे ठीक बात याद आई, जब जरूरत है उस समय वही बात स्टोर में से निकले और वही हमें फायदा दे, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो अंदर पड़ी है तो पड़ी रहे बेशक, लेकिन वो बाहर आकर के हमें डिस्टर्ब न करे, हमारी मेमोरी की इतनी अच्छी सेटिंग हो, हम अपनी स्मृति को इतना सधा करके रखें, तो क्या होगा? जब आप संकल्प करेंगे कि मुझे बाबा की स्मृति आए, मुझे अपने घर की स्मृति आए, मुझे अपने ज्ञान गुण और शक्तियों की स्मृति आए, तो तुरंत वही इमर्ज होंगी। और जो व्यर्थ बातें हैं, बीत गई भाव स्वभाव की बातें या आपके अपने ही बचपन की बातें, उनकी अब क्या जरूरत है? अब तो ईश्वरीय बचपन चल रहा है, वो तो पुराने जीवन का पुराना बचपन था, वो बात क्यों याद आई? या आप स्टूडेंट थे, वो बात आपको क्यों याद आई? कोई भी पुरानी बात, उसकी क्या आवश्यकता है? अब तुम गॉडली स्टूडेंट बन गए, अब तुमको गॉडली स्टूडेंट लाइफ की बातें याद करनी। तो मर्जीवा बनने के बाद जो पुराना जीवन था उसकी सब मेमोरीज को हमने बक्से में भर के स्टोर में रख दिया, भले वहां रहे लेकिन वो हमें डिस्टर्ब न करें। हमारे काउंटर पे सामने वो बातें हैं जो बाबा ने हमें सिखाई हैं और जिनसे हमारा कर्मयोगी जीवन सफल। ओम शांति।